दिन भर तारीख 22 अक्टूबर दिन रविवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। अक्टूबर में तीसरी बार गुजरात पहुंचे पीएम मोदी, घोघा दहेज के बीच फेरी सेवा की शुरुआत, केंद्र की पूर्व सरकार पर लगाया आरोप।
भारत सरकार में ऐसे लोग बैठे थे उस समय जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था। गुजरात के समुद्री तट पर विकास पर पूरा प्रतिबंध लगा दिया गया था।
जापान चुनाव में पीएम अबे के गठबंधन को बड़ी जीत का अनुमान, और सुनवाएंगे खास बातचीत, विकलांगों के लिए कितनी अहम है प्यार, चाहत और साथी की जरूरत।
मैं देख नहीं सकती, पर मेरे विकलांग होने का मेरे प्यार की चाहत रखने से कोई लेना देना नहीं है। इश्क की चाहत मुझे भी।
एशिया कप हॉकी में भारत की जीत की बात भी होगी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मोहम्मद शाहिद से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में 615 करोड़ रुपए की लागत से तैयार रोल ऑन रोल ऑफ यानी रो रो नौका सेवा का उद्घाटन किया। ये सेवा सौराष्ट्र में घोघा और दक्षिण गुजरात में दाहेज के बीच शुरू की गई है। इस सेवा के बाद दोनों शहरों के बीच दूरी 310 किलोमीटर से घटकर 30 किलोमीटर रह जाएगी। जापान के आम चुनावों के लिए हुए मतदान की गिनती जारी है और एग्जिट पोल के अनुसार प्रधानमंत्री शिंजो अबे जीत दर्ज कर रहे हैं। एग्जिट पोल बता रहे हैं कि शिंजो अबे की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठबंधन संसद की दो तिहाई सीटों पर कब्जा कर रहा है। गौरतलब है कि उत्तर कोरिया संकट के बीच अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अबे ने तुरंत चुनाव की घोषणा की थी। वहीं जापान में ही शक्तिशाली तूफान के कारण सैकड़ों उड़ानों और ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। शक्तिशाली तूफान लेन राजधानी टोक्यो से सोमवार को टकरा सकता है। कैटलोनिया प्रशासन के दावे को स्पेन के विदेश मंत्री ने खारिज करते हुए कहा है कि स्पेन की केंद्रीय सरकार इसका नियंत्रण अपने हाथ में लेकर तख्तापलट की कोशिश नहीं कर रही है। अल्फोंसो दास्तिस ने बीबीसी से कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि अपने पद से हटाए जाने के बाद कैटलोनिया के नेता आदेशों की उपेक्षा करेंगे। हम जो भी कर रहे हैं वह संविधान के अनुसार कर रहे हैं और इसमें कोई असाधारण तरीका नहीं है। यह जर्मन संविधान की कार्बन कॉपी है और अधिकतर पश्चिमी देशों में ऐसा संविधान आप देख सकते हैं। ये थे फ्रांस के विदेश मंत्री अल्फोंसो दास्तिस के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने बताया है कि उन्होंने कराची में एक छापे के बाद 8 चरमपंथियों को मार गिराया है। सेना के प्रवक्ता मेजर कंबर रजा ने बताया कि 5 चरमपंथियों को मुठभेड़ के दौरान मारा गया, जबकि 3 चरमपंथियों की अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। प्रशासन का अनुमान है कि इनमें से 2 चरमपंथी नए बनाए गए संगठन अंसारुल शरिया के सदस्य हैं। चेक रिपब्लिक में अरबपति कारोबारी आंद्रेज बाबिस की एएनओ पार्टी ने आम चुनावों में जीत दर्ज की है। कुल वोटों का 30% एएनओ पार्टी को मिला है। जीत के बाद अपने भाषण में बाबिस ने कहा कि वे गठबंधन के लिए सभी पार्टियों से बातचीत को तैयार हैं।
Strašně moc děkujeme, že jste nás podpořili v takovém obrovském
इतनी बड़ी जीत देने के लिए जनता का धन्यवाद। हमें विश्वास नहीं था कि हमें इतने वोट मिलेंगे, क्योंकि हमारे खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा था। जनता ने हमें एएनओ आंदोलन के नेतृत्व में सरकार बनाने का मौका दिया है। ये थे एएनओ पार्टी प्रमुख आंद्रेज बाबिस के शब्द। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे को विश्व स्वास्थ्य संगठन का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त करने के एक दिन बाद उन्हें इस पद से हटा दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस गेब्रेयेसस ने बयान जारी कर कहा कि उनको हटाना इस संगठन के हित में है। मुगाबे को गुडविल एम्बेसडर बनाए जाने के बाद अमरीका और ब्रिटेन ने इसकी निंदा की थी। सीरिया में अमरीका समर्थित सुरक्षा बलों ने कहा है कि उन्होंने देर अल जऊर नामक प्रांत में देश के सबसे बड़े तेल क्षेत्र को तथा कथित इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों से छीन लिया है। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज ने कहा है कि उन्होंने अल ओमर तेल क्षेत्र का पूरा नियंत्रण अपने कब्जे में ले लिया है। रूस के विपक्षी नेता अलेक्सेई नावल्नी को जेल से रिहा कर दिया गया है। अवैध प्रदर्शन आयोजित करने पर उन्हें 20 दिन की सजा सुनाई गई थी। नावल्नी ने जेल से छूटने के बाद सोशल मीडिया पर एक तस्वीर डालते हुए लिखा कि वह काम के लिए तैयार हैं। उन्होंने प्रशासन से अनुमति न मिलने के बाद भी आज अस्तराखन में एक सार्वजनिक सभा करने की घोषणा की है। इंडोनेशियाई सशस्त्र बलों के प्रमुख को अमेरिका आने की इजाज़त न देने पर इंडोनेशिया ने अमेरिका सरकार से जवाब मांगा है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि जनरल गेटोर नुरमांते और उनकी पत्नी को अमेरिकी बॉर्डर एजेंसी के निर्देश के बाद जकार्ता में विमान लेने से पहले वापस भेज दिया गया था। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव। ये आवाजें एशियाई हॉकी में भारत के दबदबे की जानकारी दे रही हैं। भारत ने 10 साल बाद एशिया कप हॉकी खिताब पर कब्जा जमा लिया है। हम आगे इस खबर पर बात करेंगे, लेकिन दिन भर में सबसे पहले बात गुजरात की। गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान का इंतजार है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में थे। ये अक्टूबर में उनका गुजरात का तीसरा दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भावनगर जिले के घोघा और भरूच जिले के दहेज के बीच फेरी सेवा के पहले चरण की शुरुआत की। इस परियोजना की लागत 615 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पीएम मोदी ने इस मौके पर पूर्व की केंद्र सरकार पर गुजरात के विकास में रुकावट डालने का आरोप भी लगाया। उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए।
घोघा दहेज के बीच रोरो फेरी सर्विस प्रारंभ हो रही है। 2012 में मैं आया था, इसका शिलान्यास मैंने किया था, लेकिन तब समंदर में कुछ काम करना है तो हम जरा भारत सरकार पर डिपेंडेंट रहते थे और भारत सरकार में ऐसे लोग बैठे थे उस समय जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था। गुजरात के समुद्री तट पर विकास पर पूरा प्रतिबंध लगा दिया गया था। हमारी सारी इंडस्ट्रीज को पर्यावरण के नाम पर ताले लगाने की धमकियां दी गई। मैं जानता हूं कितनी कठिनाइयों से हमने गुजरात को आगे बढ़ाने में सफलता पाई थी।
ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। घोघा के बाद पीएम मोदी दहेज पहुंचे। उनका अगला पड़ाव था वडोदरा। वडोदरा में रैली के बाद शुरू हुआ पीएम मोदी का रोड शो। गुजरात मोदी का गृह राज्य है और विधानसभा चुनाव के पहले वो एक के बाद एक सौगातों का ऐलान कर रहे हैं, नए नारे दे रहे हैं। लेकिन इस बार उनके लिए विधानसभा चुनाव की चुनौती सबसे मुश्किल बताई जा रही है। मैंने अब से कुछ देर पहले गुजराती सेवा के अपने साथी रॉक्सी छारा से बात की और सबसे पहले चुनौतियों के बारे में ही सवाल किया।
गुजरात के ये जो अभी चुनाव आने वाले हैं उसमें भाजपा के लिए हर बार जिस तरह से एक इजी केक वॉक होता है वो केक वॉक नहीं है। इस बार कांग्रेस चुनौती दे पाई है, खास करके इन तीन नेताओं की वजह से, अल्पेश ठाकुर, हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवाणी की वजह से। ये कह सकते हैं कि एक बड़ा जो वोट बैंक है भाजपा का वो अल्पेश ठाकुर और हार्दिक पटेल के साथ है, तो इनकी वजह से एक तरह से एक भाजपा के लिए यहाँ पर गुजरात में इस बार चुनौतियां बढ़ी हुई है। शायद इसीलिए मोदी साहब जो हैं वो जो गुजरात के लिए बहुत सारी सौगातें अभी जो इलेक्शन के दो महीने पहले आई है शायद वही एक उसका एक रिजल्ट हो सकता है।
लगता है चुनौतियों का अंदाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी है, जिस तरह से उन्होंने आज की अपनी रैलियों में बात की, चाहे वो नोटबंदी हो चाहे GST की हो, तो कहीं ना कहीं जो नाराज तबका है उनको मनाने की कोशिश भी जारी है।
राहुल गांधी ने अपनी सारी रैली जितनी भी हुई उसमें हर बार सीधा नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, डीमोनिटाइजेशन और GST की बार बार बात की। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा को ये एहसास हो गया है कि उनकी जो बड़ी वोटर बैंक है, जो ट्रेडर्स कम्युनिटी है, जो उन सभी लोगों को तकलीफें भी GST की वजह से पड़ी है और कांग्रेस उसको उसका फायदा लेना चाहती है, तो शायद इसीलिए मोदी साहब को उस चीज का कुछ अंदाजा आ गया है और शायद इसीलिए आज भी उन्होंने GST की बात कही। तो नरेंद्र मोदी साहब जो ये सारी बातें कह रहे हैं वो साफ तौर पर दिखता है कि वो समझ रहे हैं कि चुनौती गुजरात में इस बार इतनी आसान नहीं जितनी हर बार होती है।
कल कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी गुजरात में होंगे, देखना होगा कि वो क्या कुछ कहते हैं। जानकारी दे रहे थे रॉक्सी छारा। अगली खबर बिहार से। बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड एक बार फिर चर्चा में है। बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में फेल घोषित की गई एक छात्रा की कॉपियां हाईकोर्ट के आदेश पर दोबारा जांची गई और वो प्रथम श्रेणी अंकों के साथ पास हुई। पूरे मामले की जानकारी दे रही है पटना से सीटू तिवारी।
बीते 4 माह पहले अपना आत्मविश्वास खो चुकी प्रियंका सिंह के चेहरे पर खुशी ने अपना बसेरा फिर से बसा लिया है। 22 जून को बिहार बोर्ड ने प्रियंका सिंह को अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया था। पढ़ने में मेधावी छात्रा प्रियंका के लिए किसी सदमे जैसा था। प्रियंका बताती हैं,
रिजल्ट को देखे हम बहुत परेशान हो गए थे क्योंकि रिजल्ट जो है मेरी आशा के बिल्कुल विपरीत थे। मेरा रिजल्ट बहुत ही बुरा था और उसके लिए हमने स्क्रूटनी में आवेदन किया परंतु वहाँ पर सुधार नहीं हुआ। उसके बाद हाईकोर्ट में केस किए और अंततः मेरा रिजल्ट सुधरा, इससे हम बहुत खुश हैं।
सहरसा के डीडी हाई स्कूल सरडीहा की छात्रा प्रियंका को संस्कृत में महज 9 और विज्ञान में 49 नंबर मिले थे। संस्कृत में फेल प्रियंका ने पहले स्क्रूटनी के लिए अप्लाई किया जिस पर बोर्ड ने नो चेंज यानी कोई बदलाव नहीं का रिजल्ट दिया। परेशान प्रियंका ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जिस पर उसकी कॉपियों की फिर से जांच हुई, जिसके बाद प्रियंका के संस्कृत में नंबर बढ़कर 61 और विज्ञान में 100 हो गए। बीते 18 सितंबर को कोर्ट ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया। जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की अदालत ने बिहार बोर्ड को 3 माह के अंदर प्रियंका को 5 लाख रुपए अदा करने का आदेश दिया। प्रियंका के वकील रतन कुमार बताते हैं,
माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि लड़की के केस में जो भी खर्च हुए लिटिगेशन कॉस्ट प्लस मेंटल एगोनी कॉस्ट के रूप में 5 लाख रुपया बोर्ड को हर्जाना देना है, वह भी 3 महीने के अंतर्गत।
गौरतलब है कि अपने इस फैसले में कोर्ट ने बोर्ड से स्क्रूटनी के नियम में भी तब्दीली लाने का आदेश दिया है। बता दें, अब तक स्क्रूटनी में सिर्फ कॉपियों में मिले नंबर की रीटोटलिंग होती थी, लेकिन अब रीचेकिंग भी संभव होगी। इस फैसले के बाद बिहार बोर्ड की कॉपियों की बारकोडिंग की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। इस मामले की सुनवाई के वक्त प्रियंका ने अपनी कॉपियों की मांग की थी, जिस पर बोर्ड ने जो कॉपियां पेश की उसे प्रियंका ने अपना मानने से इनकार कर दिया था। बाद में हैंडराइटिंग मिलान में प्रियंका के दावे को सही पाया गया। बैकफुट पर आए बिहार बोर्ड ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा है कि बारकोडिंग में बदलाव सहरसा के किसी कर्मचारी ने व्यक्तिगत रंजिश के तहत किया है। शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा कहते हैं,
हम समझते हैं कि जो भी इसके लिए दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और आगे ऐसी घटना इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो उसके लिए इसको प्रयास किया जाएगा।
प्रियंका की इस लड़ाई और जीत से उसके शिक्षक पिता राजीव सिंह बहुत खुश हैं। उनकी बिटिया प्रियंका सिंह अब बिहार बोर्ड की 10वीं की फेल छात्रा नहीं बल्कि 422 नंबर लाकर फर्स्ट विजनर है। प्रियंका बिहार बोर्ड की असफलताओं के शिकार दूसरे छात्रों के लिए प्रेरणा भी है। सीटू तिवारी, BBC पटना।
और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। जापान में आम चुनाव के बाद एग्जिट पोल में प्रधानमंत्री शिंजो अबे के गठबंधन की जीत का अनुमान जाहिर किया गया है। एग्जिट पोल के अनुमानों के मुताबिक अबे की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को 2/3 सीटें मिल सकती हैं। अबे ने उत्तर कोरिया की ओर से बढ़ते खतरे के बीच अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए समय से पहले चुनाव कराने का फैसला किया था। नतीजे अनुमानों के मुताबिक आए तो अबे जापान में सबसे लंबे वक्त तक कुर्सी पर रहने वाले प्रधानमंत्री बन सकते हैं।
75 वर्षों से आपके साथ
BBC हिंदी रेडियो
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
प्यार, चाहत और साथी की जरूरत जिंदगी का आम हिस्सा मानी जाती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि विकलांग लोगों की जिंदगी में इनकी कितनी अहमियत है? दुनिया की आबादी का 15% यानी करीब 1 अरब लोग विकलांग हैं, पर उनकी जिंदगी के इस पहलू के बारे में बाकी लोग कितनी समझ रखते हैं, यही समझने के लिए BBC संवाददाता दिव्या आर्य कुछ विकलांग लोगों से मिली और उन मुलाकातों से उन्होंने जो समझा उस अनुभव को हमारे साथ साझा किया। मैंने दिव्या आर्य से बात की और सबसे पहले उनसे पूछा कि इस विषय पर काम करने का विचार उन्हें कैसे आया।
सच बताऊं तो वात्सल्य, एक किताब पढ़ रही थी मैं, एक विकलांग औरत की ही लिखी हुई वो किताब है और उसमें उन्होंने ज़िंदगी के कई पहलुओं के बारे में बात की है और वहाँ पे पहली बार मैंने भी इस बारे में सोचा कि हाँ, मैंने तो कभी सोचा नहीं, बहुत कम ही विकलांग लोगों को मैं जानती हूँ, पर मैंने कभी ये नहीं सोचा कि उनकी ज़िंदगी में प्यार या शारीरिक चाहत इन सब की क्या जगह होगी, क्योंकि मैंने भी समाज के बाकी लोगों की तरह उनकी ज़िंदगी में सिर्फ शिक्षा, रोज़गार, उनके अपने पैरों पे खड़े होने की ज़रूरत, इन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत दी। तो वो पढ़कर मन में ये सवाल भी आया, थोड़ी शर्म भी आई कि इससे ज़्यादा बेहतर समझ बनानी चाहिए। फिर एक ये बॉलीवुड की फ़िल्म आई काबिल, शायद आपके जहन में हो, उसमें ऋतिक रोशन थे मुख्य कलाकार और एक पहली बार एक मेन स्ट्रीम फिल्म में दोनों जो किरदार हैं, हीरो और हीरोइन, उनके किरदार जो हैं वो ब्लाइंड हैं, वो नेत्रहीन हैं और ये उनकी प्रेम की कहानी है और फिर उसमें और आगे चीज़ें बदलती हैं। तो तब सोचा कि क्यों ना एक नेत्रहीन लड़की के साथ उसे देखा जाए और उस लड़की के साथ उस फिल्म को देखने पर भी फिर मुझे समझ में आया कि एक नेत्रहीन व्यक्ति, एक विकलांग व्यक्ति प्यार को कैसे देखता है, प्यार के बारे में क्या सोच रखता है और काफ़ी मायनों में वो एक मेरे जैसे, यानी कि जो देख सकती है, जो विकलांग नहीं है औरत, उसके अनुभव के काफ़ी करीब है। ये कुछ कुछ चीज़ें थीं जिन्होंने उस तरफ सोचने पे मजबूर किया, ये सोचने पे मजबूर किया कि जिस्मानी चाहत अगर आपके कोई शारीरिक विकलांगता है तो भी उतनी ही है, शादी की चाहत उतनी ही है, प्यार की एक साथी का जो एक कंपेनियनशिप जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं, किसी का साथ जो वो एक देता है आपको, एक आपकी ज़िंदगी में एक रंग भरता है, उसकी ज़रूरत है। जिस दुनिया के बारे में नहीं पता उसके बारे में जानने का शायद सबसे बेहतर तरीका है कि उस दुनिया में आप दाखिल हों, तो और विकलांग लोगों से बातचीत बढ़ाई ताकि कुछ समझ पाएं।
तो कितना जान पाएं आप उनसे, कितना खुलकर बोले वो इस पहलू पर?
देखिए वैसे तो विकलांग मर्द और औरत दोनों की ही बात हमें करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि एक विकलांग औरत से बात करना और ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारी एक समाज में हम एक अगर सीढ़ी बनाएं तो उसमें शायद वो एक पायदान नीचे ही होगी एक विकलांग मर्द के। और मेरी रुचि भी थी उनके बारे में जानने की, तो मैंने उनसे ज़्यादा बात की और बहुत सारे लोगों से बहुत सारी बात करने के बजाय थोड़ी बात की और एक से बहुत ज़्यादा बात की, ताकि उस एक लड़की की कहानी मुझे ज़्यादा समझ में आए। उनकी पहचान हम जाहिर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहती थी। बड़ा मुश्किल है किसी से ये चाहना कि वो अपने प्यार, अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में
खुलकर सामने आए।
बिल्कुल, तो वो मुश्किल था, लेकिन शायद कुछ हमारा एक रापता बना, कुछ बात कहीं तार जुड़े और उन्होंने काफ़ी खुल के मुझसे बात की। बहुत खूबसूरत हैं वो, बहुत लंबे बाल हैं उनके, बहुत अट्रैक्टिव हैं अगर मैं एक आम भाषा में कहूँ, उनसे शायद किसी को भी प्यार हो जाए। बहुत पढ़ी लिखी हैं, बहुत होनहार हैं। ये सब मैं इसलिए कह रही हूँ कि कैसे मैं उनका चित्रण करूँ आपके सामने कि वो कैसी हैं।
शब्दों से ही आपने एक तस्वीर बना दिया उनकी।
मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब आपको किसी से प्यार होता है तो सिर्फ इस बात से नहीं होता कि वो गैर विकलांग है या विकलांग है, बल्कि उसकी पूरी पर्सनालिटी से होता है। उनके बहुत सारे अनुभव, उनकी चाहत कि उन्हें किसी से प्यार हो और उससे जुड़े उनके शको शुभा, डर, एप्रिहेंशंस, मेरे या मेरी सहेलियों के जो विकलांग नहीं हैं उनके नज़दीक थे। बस कुछ कुछ फ़र्क था ज़ाहिर तौर पर, क्योंकि वो विकलांग हैं और वही समझना मेरे ख्याल से मेरे लिए ज़रूरी था। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि कुछ हम उनके शब्दों में ही वो बातें सुने। शब्द उनके हैं, आवाज मेरी सहयोगी की है।
मैं देख नहीं सकती, पर मेरे विकलांग होने का मेरे प्यार की चाहत रखने से कोई लेना देना नहीं है। इश्क की चाहत मुझे भी है, उतनी ही शिद्दत से जितने किसी और लड़की को होगी। बस उसे महसूस करने का मेरा अनुभव अलग है। पहली बार जब एक लड़के ने दोस्ती करने की कोशिश की थी तो उसकी आंखों में देख उसकी नीयत का पता नहीं लगा सकती थी। इतने जाने अनजाने लोग रोज हाथ पकड़कर मदद करते हैं कि जब वो हाथ पकड़कर सड़क पार करवाता था तो बदन में कोई सिहरन नहीं होती थी।
तो बस ये अनुभव अलग है जैसा वो बता रही हैं। हम में से कोई भी अगर किसी रिश्ते में जाएगा तो उसमें विश्वास कायम करने में वक्त लगता है। करीब आने की जो अपनी एक कशिश है, उसको आप कैसे महसूस करते हैं, उसके लिए आप कैसे कदम उठाते हैं, ये सब उसका हिस्सा है। ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बस उनको उन्हें समझना कैसे है, महसूस करना कैसे है, ये अलग था।
अब मिलने के लिए बहाना नहीं ढूंढते थे हम, बस जगह ढूंढते थे कुछ पल साथ होने के लिए। यूनिवर्सिटी के जंगल जैसे रिज इलाके में भी जाते थे, पर मुझे हमेशा लगता था कि हमें कोई देख रहा है। मैं ये पता नहीं लगा सकती थी कि हमारे पास कोई है या नहीं। सुकून तब हुआ जब मेरे बॉयफ्रेंड को हॉस्टल मिला। करीब होने का एहसास तब खुल कर महसूस कर पाए।
अभी तो हमने उनके सिर्फ प्यार की बात की, फिर प्यार के बाद ऐसा हुआ कि उनके बॉयफ्रेंड ने उन्हें धोखा दिया और उन्हें दोस्तों के ज़रिए पता चला, लेकिन अपने स्तर पर उसकी पुष्टि करना उनके लिए बहुत मुश्किल था। बॉयफ्रेंड ने एकदम माना नहीं कि उसने ऐसा कुछ किया है, और क्योंकि वो देख नहीं सकती थी, अपने बॉयफ्रेंड के फ़ोन पर मैसेज चेक करना या अचानक उनके हॉस्टल में जाकर उनका कमरा चेक करना, उनसे ये बात कबूलवाना बहुत मुश्किल था उसके लिए। कहीं पे मैं कह रही हूँ वो अनुभव अलग हो जाता है। शायद मेरे लिए अगर मेरे साथ ऐसा हो तो मेरे लिए ये सब करना शायद आसान हो, और इसीलिए शायद वो चोट भी कुछ हद तक उन्हें उस तरह से लगी कि मेरी विकलांगता का एहसास मुझे दिलाया गया या उसका गलत फ़ायदा उठाया गया। पर जो बात मेरे जहन में सबसे ज़्यादा रह गई वो धोखा या उनकी विकलांगता का फ़ायदा उठाया जाना, ये सब नहीं था, बल्कि उनकी ज़िद और आत्मविश्वास।
मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, राष्ट्रीय स्तर की एथलीट हूँ और अपने हॉस्टल की प्रेसिडेंट भी। मेरे दोस्तों ने कहा, नेत्रहीन होते हुए इतना कुछ हासिल कर लिया है तो बॉयफ्रेंड नहीं भी रहा तो क्या फ़र्क पड़ता है? पर फ़र्क पड़ता है। विकलांग हूँ तो क्या, प्यार मुझे भी चाहिए।
उनकी प्यार की चाहत तो बरकरार है, पर सारे अनुभव तो ऐसे नहीं हुए होंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक की वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन डिसेबिलिटी हमें बताती है कि आम औरतों और विकलांग मर्दों के मुकाबले विकलांग औरतों की शिक्षा और रोजगार दर कम और हिंसा का शिकार होने की दर ज्यादा होती है।
बिल्कुल, ये वही जो मैंने कहा कि सीढ़ी का जो पायदान है वो सबसे निचले पायदान पे शायद विकलांग औरतें हैं, इसीलिए क्योंकि ये जो हिंसा का शिकार होने की दर ज्यादा है और जो शिक्षा और रोजगार की दर कम है, यानी कि वो इंडिपेंडेंट अपने पैरों पे खड़ी कम है, हिंसा का शिकार होने का भी एक खतरा लगातार बना हुआ है। तो चाहे चाहत हो उसको जज करना हमेशा एक तय कर पाना कि जो व्यक्ति जिसके करीब आप आना चाहती हैं या जो आपके करीब आना चाहता है उसका उसकी मंशा दरअसल क्या है, ऐसी संभावना बनी रहती कि गलत फ़ायदा उठाया जाएगा। लेकिन इसको भी मैं और अच्छे से समझना चाहती थी कि ये क्या एक औरत को, एक विकलांग औरत को फिर पूरी तरह रोकता है। और कभी कभी मुझे लगता है कि हम डर का हवा बना देते हैं, क्योंकि यौन हिंसा का डर तो मुझे भी होना चाहिए ना, सड़क पे मैं भी निकलती हूँ, तो वो उसको कितना वो हावी होने देती हैं। एक और लड़की की कहानी मैंने जानी, उनसे बात की, उनका सामूहिक बलात्कार हुआ था, वो शारीरिक रूप से विकलांग है, ऐसा उनके साथ उन्हीं के पड़ोसी और उसके दोस्त ने किया था। पर सबसे दर्दनाक उनसे बातचीत करके मुझे ये लगा कि हिंसा से भी ज़्यादा उसके बाद जो समाज और पुलिस का रवैया था वो बहुत बुरा था, बहुत दर्दनाक था, क्योंकि कोई मानने को तैयार नहीं था कि एक विकलांग लड़की से बलात्कार हो सकता है।
मैं तुम सबकी तरह चल नहीं सकती, इसीलिए सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, लंगड़ाती हूँ, इसीलिए पुलिस मेरी बात पर यकीन नहीं करती, कहती है कि तुम विकलांग हो, तुम्हारे बलात्कार से किसी को क्या मिलेगा। पर मैं सच कह रही हूँ, दो आदमियों ने मेरा बलात्कार किया है, उनमें से एक मेरा पड़ोसी था। मैं अक्सर उसके घर जाती थी क्योंकि वहाँ कलर टीवी था, मुझे लगता था कि उसे भी मैं अच्छी लगती हूँ, उसका परिवार भी मेरा ख्याल रखता था, इसीलिए मेरी माँ की नज़र में उनका घर मेरे लिए सुरक्षित था।
तो जैसा वो कह रही थी कि उनकी माँ की नज़र में, उनकी अपनी नज़र में एक भरोसेमंद व्यक्ति था उनका पड़ोसी, वो घर अच्छा था, सुरक्षित था, लेकिन एक दिन चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स पिलाने के बहाने वो पड़ोसी उन्हें घर से बाहर ले गया और कुछ नशा दे दिया, जिसके बाद उसके दोस्त के साथ मिलकर उन्होंने उसका सामूहिक बलात्कार किया और बाद में उस लड़की की माँ को वो सड़क पर बेहोश मिली। पर अच्छी बात ये थी कि कभी कभी परिवार भी विश्वास नहीं करता, पर माँ ने उनकी बात का यकीन किया, पुलिस में शिकायत दर्ज की, लेकिन वही ये जो रवैया वहाँ पे जाके बदला तो उससे एक बहुत हताशा हुई इस लड़की को, वो भी उम्मीद और नाउम्मीदी के बीच में एक तरह से झूल रही है, क्योंकि वो विश्वास करना भी चाहती है कि उसे न्याय मिलेगा, पर उसे अभी भी यकीन नहीं है, क्योंकि एक जो सामाजिक सोच है वो पुलिस, पड़ोसी सब पे असर डाले हुए है।
पुलिस ने केस दर्ज तो कर लिया है पर उनकी नज़र में मैं झूठी हूँ, तो न जाने तहकीकात कैसे होगी, अदालत में वो कैसे सबूत पेश करेंगे। मैं बहुत रोई, सारी हिम्मत टूट गई। आस पड़ोस में भी सबने कहा वो बहुत अच्छा लड़का है, तुम विकलांग हो तो उसे तुमसे शारीरिक रिश्ता बनाने में दिलचस्पी क्यों होगी। पर मैंने तो सचमुच उसका यकीन किया था, जब उसने मुझे मजाक में एक बार शादी के लिए पूछा था, मैंने संजीदगी से मन में हाँ भी कह दिया था।
पर फिर वही बात मैं वात्सल्य यहाँ कहना चाहूँगी, जैसा मैंने पहली अपनी जिस औरत से मिली उसके बाद मैंने कहा कि जो मेरे साथ रह गया ना, वो उनकी विकलांगता या उनका कमज़ोर होना नहीं था, क्योंकि इस मामले में भी उस लड़की को झूठा माना गया, उसकी माँ का और उसका सामाजिक बहिष्कार हुआ, उन्हें अपना पड़ोस छोड़ना पड़ा, कहीं और जाके रहना पड़ा, इस सब ने उसको और उसकी माँ को उस तरह से नहीं तोड़ा, वो फिर से उन्होंने अपने आप को समेटा, वो अपने केस को अब आगे ले जाना चाहते हैं, उसको परस्यू कर रहे हैं, उम्मीद है उन्हें कि सज़ा मिलेगी उस पड़ोसी और उसके दोस्त को, और एक गैर सरकारी संस्था के साथ जुड़कर ये जो लड़की है कुछ काम सीखना चाहती है, ताकि अपने गुजर बसर के लिए पैसे कमा सके और किसी पर निर्भर ना रहे। अब आप सुनिए कि वो इतना कुछ होने के बाद भी उसकी चाहत अभी भी बरकरार है।
मेरा सामूहिक बलात्कार हुआ है और लोग मुझे झूठी मानते हैं, माँ के लिए इस कलंक को धोना सबसे अहम है, मेरे लिए भी, पर यह तो दुनिया का नज़रिया है। मेरी नज़र में इस सब के बावजूद मेरे सपने जिंदा हैं, मैं काम भी करना चाहती हूँ और शादी भी, टीवी में देखा है आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है।
यानी इनकी उम्मीद बाकी है, लेकिन ये सारी बातें सोचने को मजबूर करती हैं। हमने कभी इतनी गहराई से या करीब से इन पहलुओं को नहीं समझा है, और जाहिर है इस सारी बातचीत के बाद मन में एक सवाल आता है कि विकलांग लोगों की शादी का अनुभव कैसा होता होगा।
हाँ बेशक, क्योंकि प्यार और साथी ये सब मिलके शादी का ही अक्सर रूप लेते हैं। पर शायद आप अपने भी आसपास देखें, गैर विकलांग व्यक्ति किसी विकलांग व्यक्ति से शादी करे ऐसा बहुत कम होता है। उसकी भी अलग वजहें होती हैं। कई बार अगर गैर विकलांग व्यक्ति किसी कमज़ोर वर्ग से है और जो विकलांग व्यक्ति है वो थोड़े धनी परिवार से आता है, तो उस वजह से इस तरह का जोड़ा बन जाए। पर एक इक्वल पार्टनरशिप, जैसे हम एक शादी में जो हम चाहते हैं कि एक ही स्तर पर एक ही समझ एक ही सोच, उस तरह की एक शादी कम आपको मिलेगी। अक्सर दो विकलांग आपस में शादी करते हैं, पर वो भी कम होता है क्योंकि जो परिवार हैं, खासतौर पर जब विकलांग व्यक्ति अपने पैरों पर खुद नहीं खड़े हैं, वो अगर अपने परिवार पर निर्भर हैं, तो परिवार उनकी शादी को अहमियत नहीं देता। तो इसी को बदलने के लिए एक सरकारी योजना कई प्रदेशों में लागू की गई है, जो विकलांगों से विवाह को बढ़ावा देने के लिए कुछ पैसे की मदद देती है। इससे कितना बदलाव आ रहा है, इसकी क्या अहमियत है, ये कितनी कारगर है और हमें आखिर इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी है, ये सब टटोलने की मैंने कोशिश की बिहार जाकर, वहाँ पर ये योजना लागू है, वहाँ पर कुछ विकलांग लोगों से मुलाकात करके, और उस पर एक रिपोर्ट बनाई, जो अब आज का समय खत्म हो गया है इसलिए अपने श्रोताओं को हम कल सुनाएंगे।
आप कल ये रिपोर्ट ज़रूर सुनाएं और दिव्यार के शोध को लेकर अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। और अब रुख खेल के मैदान का, मौजूद हैं आदेश कुमार गुप्त। आदेश जी, हॉकी के मैदान से भारत के लिए अच्छी खबर आ चुकी है, क्रिकेट से इंतजार है, तो क्या पहले बात करेंगे हॉकी की?
जी हाँ बिल्कुल, ढाका में एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जो थोड़ी देर पहले समाप्त हुआ, जहां भारत ने रोमांचक फाइनल में मलेशिया को 2-1 से मात दी। इससे पहले भारत ने साल 2003 और 2007 में भी एशिया कप जीता था, यानी एशिया की बादशाहत हासिल करने के लिए भारत को 10 साल का इंतज़ार करना पड़ा। और भारत के लिए तीसरे ही मिनट में रमनदीप सिंह ने मैदानी गोल कर भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई, और उसके बाद 29वें मिनट में ललित उपाध्याय ने दूसरा गोल किया। मलेशिया के लिए एकमात्र गोल 50वें मिनट में साबा शाहरी ने किया। उसके बाद मलेशिया ने वापसी की काफी कोशिश की, किसी तरह से 2-2 का स्कोर हो, लेकिन ऐसा नहीं हो
नहीं
सका
हो,
और टाई ब्रेकर से पहले ही भारत ने इस मुकाबले को
जीतकर एशिया में अपनी बादशाहत कायम कर ली।
जी,
और क्रिकेट के मैदान का क्या हाल है मुंबई में, जहां भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला मैच हो रहा है और विराट कोहली का ये 200वां मैच है।
जी हाँ, बहुत ही अद्भुत पारी खेली आज विराट कोहली ने और इसे यादगार बनाया, जब उन्होंने 121 रनों की शतकीय पारी खेली, केवल 125 गेंदों का सामना किया जिसमें 9 चौके और 2 छक्के शामिल थे। और ये कहिए कि उसके अलावा अगर बाकी भारतीय बल्लेबाजों पर नजर डाली जाए तो दिनेश कार्तिक ने 37, महेंद्र सिंह धोनी ने 25, भुवनेश्वर कुमार ने 26 और रोहित शर्मा ने 20 रन बनाए। तो भारत ने कुल मिलाकर 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 280 रन बनाए। फिलहाल न्यूजीलैंड का स्कोर 3 विकेट खोकर 139 रन है और 29वां ओवर प्रगति पर है।
जी, मैं विराट की बात करना चाहूंगा कि 200वां मैच और ये 31वां शतक रिकी पॉन्टिंग को पीछे छोड़ चुके हैं, आगे केवल सचिन तेंदुलकर हैं, 51-49 मेरे ख्याल से उनके वनडे शतक हैं, तो क्या लग रहा है यहाँ से?
जी देखिए, अगर यही रफ्तार रही, यही फिटनेस रही और इसी तरह से एक दिवसीय क्रिकेट का बोलबाला रहा, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि विराट कोहली इससे भी आगे निकल सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि एक दिवसीय मैच आजकल काफ़ी खेले जाते हैं।
आदेश जी, संक्षेप में इस मैच का नतीजा किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है आपको?
देखिए, इस समय तो पलड़ा बराबरी पर टिका हुआ लगता है, लेकिन रॉस टेलर और लैथम की जो जोड़ी है, इसके बाद केवल सेंटनर हैं। अगर 2 विकेट भारत को 200 रन तक पहुँचते मिल जाए तो पलड़ा भारत के पक्ष में झुक सकता है।
जी विस्तार से सुबह नमस्कार भारत में आपसे जानेंगे आदेश जी, बहुत शुक्रिया। वक्त विदा लेने का हो रहा है, लेकिन मुख्य समाचार एक बार फिर सुन लेते हैं मोहम्मद शाहिद से।
बीबीसी समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में सौराष्ट्र के घोघा और दाहेज के बीच 615 करोड़ रुपए की लागत से तैयार रोल ऑन रोल ऑफ यानी रोरोनो का सेवा का उद्घाटन किया। जापान के आम चुनावों के लिए हुए मतदान की गिनती जारी है और एग्जिट पोल के अनुसार प्रधानमंत्री शिंजो अबे जीत दर्ज कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वह उत्तर कोरिया का मजबूती से सामना करेंगे। कैटालोनिया प्रशासन के दावे को स्पेन के विदेश मंत्री ने खारिज करते हुए कहा है कि स्पेन की केंद्रीय सरकार इसका नियंत्रण अपने हाथ में लेकर तख्ता पलट की कोशिश नहीं कर रही है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने बताया है कि उन्होंने कराची में एक छापे के बाद 8 चरमपंथियों को मार गिराया है। बीबीसी समाचार।
दिनभर में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे देवाशीष कुमार, फेसबुक लाइव आप तक पहुंचाया मानसी दास ने। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।